एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो मुझे लगता है हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकती है।
हाँ, कौन सी किताब?
एनी ड्यूक की किताब थिंकिंग इन बेट्स, मेकिंग स्मार्टर डिसीजंस When you don't have all the facts.
Oh, wow. Annie Duke. हाँ, ये तो बहुत ही प्रासंगिक किताब है आज के समय में।
नमस्ते।
नमस्ते।
प्रासंगिक कैसे?
देखिए, जिंदगी में हर कदम पर अनिश्चितता है ना?
हाँ, बिल्कुल।
चाहे वो करियर का कोई बड़ा फैसला हो, कोई निवेश हो, या रोजमर्रा के छोटे मोटे चुनाव भी। हमें अक्सर मतलब पूरी जानकारी तो होती नहीं।
सही बात है।
और उसी अधूरी जानकारी के साथ हमें फैसले लेने पड़ते हैं। तो ये किताब हमें सिखाती है कि इस अनिश्चितता के साथ बेहतर ढंग से कैसे जिया जाए और ज्यादा समझदारी भरे फैसले कैसे लें।
बिल्कुल। और किताब का एक जो नजरिया है वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि जिंदगी शतरंज नहीं है, पोकर का खेल है।
हाँ, ये उनका मेन मेटाफर है।
शतरंज में तो सब कुछ सामने होता है, यू नो, कौन जीतेगा ये ज्यादातर स्किल पर निर्भर करता है।
हाँ, जानकारी पूरी होती है।
लेकिन पोकर,
हाँ,
पोकर की तरह जिंदगी में भी हमें छिपे हुए पत्तों, मतलब अधूरी जानकारी और थोड़ी किस्मत, इनके साथ खेलना होता है।
बिल्कुल। और यहीं पर शायद वो रोल और गोल वाली बात फिट होती है जो आपने शुरू में मेंशन की थी। हमारा गोल यानी लक्ष्य तो है कि नतीजे अच्छे हों।
हाँ, जाहिर है।
लेकिन उसे पाने में हमारा असली रोल, हमारी भूमिका क्या है? क्या सिर्फ नतीजों के पीछे भागना, या फिर एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा सोचने का तरीका बनाना जिससे लंबे समय में बेहतर फैसले लेने की संभावना बढ़े?
अच्छा, तो ये किताब प्रक्रिया पर जोर देती है?
हाँ बिल्कुल, नतीजों से ज्यादा प्रक्रिया पर।
तो चलिए सबसे पहले इस किताब की लेखिका एनी ड्यूक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है?
हाँ बिल्कुल नहीं। एनी ड्यूक को पृष्ठभूमि वाकई में बहुत अनोखी है। मतलब उनमें दो अलग अलग दुनियाओं का एक गजब का मेल है।
दो दुनिया कौन सी?
एक तरफ वो दुनिया की जानी मानी पेशेवर पोकर खिलाड़ी रह चुकी हैं। वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर ब्रेसलेट जीता है उन्होंने।
अरे वाह, ये तो बड़ी बात है।
हाँ, छोटी बात नहीं है। टूर्नामेंट्स में उन्होंने $4 मिलियन से ज्यादा कमाए हैं। और पोकर, आप जानती हैं, वो खेल ही ऐसा है जहां आपको लगातार कम जानकारी, संभावनाओं और सामने वाले की साइकोलॉजी को पढ़ते हुए बड़े दांव लगाने होते हैं।
बिल्कुल, हाई स्टेक्स, रियल लाइफ एक्सपीरियंस।
एग्जैक्टली, ये है उनका प्रैक्टिकल अनुभव।
और दूसरी दुनिया क्या है?
दूसरी तरफ एक गहरा अकादमिक ज्ञान। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की पढ़ाई की। हाँ, और वहां उन्होंने सीखा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम कैसे सीखते हैं, याद रखते हैं, और सबसे जरूरी, हम फैसले कैसे लेते हैं।
वाह, मतलब एक तरफ पोकर टेबल पर असली दुनिया का हाई स्टेक प्रेशर वाला तजुर्बा, और दूसरी तरफ दिमाग कैसे फैसले लेता है इसका वैज्ञानिक अध्ययन। ये तो सच में गजब का संगम है,
है ना? और इसी वजह से वो अनिश्चितता में निर्णय लेने या हमारे सोचने की जो गलतियां होती हैं, जिन्हें हम कॉग्निटिव बायस कहते हैं,
हाँ, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह,
हाँ, उन जैसे विषयों पर लिखने के लिए वो एकदम सही व्यक्ति हैं। अब वो कॉर्पोरेट सलाहकार भी हैं और उन्होंने अलायंस फॉर डिसीजन एजुकेशन नाम की संस्था भी शुरू की है।
अच्छा,
जो निर्णय लेना सिखाती है।
जी, तो अब आते हैं किताब के मूल आइडिया पर। इसका सार क्या है? ये किताब असल में क्या कहना चाहती है?
देखिए, ये किताब असल में हमारे निर्णय लेने के पूरे नजरिए को, पूरे फ्रेमवर्क को बदलने की एक कोशिश है।
बदलने की? कैसे?
पहला कदम है ये मानना, ये स्वीकार करना कि जिंदगी अनिश्चित है और इसमें किस्मत, लक, भाग्य, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है।
ये मानना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी।
होता है, लेकिन जरूरी है। तो किताब का मुख्य उद्देश्य है एक ऐसा सोचने का ढांचा, एक मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करना जिसमें हम नतीजों से ज्यादा अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया यानी अपने रोल पर फोकस करें।
ठीक है, इसको थोड़ा और खोलते हैं। किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, केंद्रीय तर्क, वो क्या है? वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो हम फैसले लेते वक्त अक्सर कर बैठते हैं?
सबसे बड़ी गलती, जिसे ड्यूक कहती हैं, रिजल्टिंग।
रिजल्टिंग,
हाँ, रिजल्टिंग इसका मतलब है किसी फैसले को सिर्फ और सिर्फ उसके नतीजे से आंकना।
जैसे?
जैसे नतीजा अच्छा आया तो मान लिया कि फैसला बहुत अच्छा था, और अगर नतीजा बुरा आया तो मान लिया फैसला ही खराब था। हम सभी करते हैं ना?
हाँ, ये तो बहुत बहुत ही आम बात है। पर इसमें गलत क्या है? आखिर नतीजों से ही तो पता चलता है ना कि फैसला सही था या गलत।
यहीं पर ड्यूक हमें रोकती हैं। वो कहती हैं कि ये गलत इसलिए है क्योंकि इसमें किस्मत की भूमिका को हम पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं।
अच्छा,
कैसे? सोचिए, आपने पूरी रिसर्च की, सोच समझ कर कहीं पैसा लगाया,
ठीक,
प्रक्रिया एकदम बढ़िया थी, लेकिन अचानक बाजार गिर गया और आपको नुकसान हो गया। तो क्या इसका मतलब है कि आपका फैसला गलत था? जरूरी नहीं। हो सकता है आपकी प्रक्रिया सही थी, पर किस्मत, लक, वो खराब निकला।
और इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब बिना सोचे समझे कुछ किया और तुक्के से सफल हो गए।
बिल्कुल। और तब हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं, वाह, हम कितने होशियार हैं, जबकि शायद वो सिर्फ अच्छी किस्मत थी।
हाँ, होता है ऐसा।
तो ड्यूक कहती हैं कि सिर्फ नतीजों पर, यानी रिजल्टिंग पर फोकस करने से हम सही सबक नहीं सीख पाते। हम अपनी किस्मत को अपना कौशल समझने लगते हैं या बुरी किस्मत को अपनी नाकामी मान बैठते हैं। इससे हमारा असली रोल क्या है, यानी अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाना, वो पीछे छूट जाता है।
तो फिर समाधान क्या है? कैसे सोचना चाहिए हमें?
समाधान है, ड्यूक के हिसाब से, पोकर खिलाड़ी की तरह सोचना।
पोकर खिलाड़ी की तरह?
हाँ, हर फैसले को भविष्य पर लगाई गई एक शर्त, एक बेट की तरह देखना।
शर्त मतलब जुआ खेलना?
नहीं, शर्त का मतलब यहाँ जुआ खेलना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है ये मानना कि नतीजा पक्का नहीं है, उसमें संभावनाएं शामिल हैं, अनिश्चितता है। हमारा लक्ष्य हर शर्त जीतना नहीं हो सकता।
तो लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य है ऐसी शर्तें लगाना, ऐसे फैसले लेना जिनके लंबे समय में सफल होने की संभावना ज्यादा हो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। हमारा रोल है एक मजबूत, तर्कसंगत निर्णय प्रक्रिया बनाना, न कि हर बार सही नतीजा हासिल करने की गारंटी देना, क्योंकि वो गारंटी तो है ही नहीं।
ये बहुत दिलचस्प है। तो ये किताब पाठक को किस तरह के सफर पर ले जाती है, क्या क्या सिखाती है?
देखिए, ये किताब पहले तो हमें अपनी निर्णय लेने की जो कमजोरियां हैं, जैसे हमारे अंदर छुपे हुए पूर्वाग्रह, बायसेस,
हाँ, जैसे कन्फर्मेशन बायस वगैरह,
हाँ, उनको पहचानने में मदद करती है। फिर ये बेट्स में सोचने का तरीका सिखाती है, मतलब चीजों को हाँ या ना में, ब्लैक एंड व्हाइट में देखने के बजाय संभावनाओं में देखना, 70% चांस, 30% चांस, इस तरह से।
ओके।
और इसके बाद ही कुछ प्रैक्टिकल तरीके, कुछ टूल्स बताती हैं, जैसे दूसरों से असहमति कैसे मांगे ताकि हमारी सोच बेहतर हो, नई जानकारी मिलने पर अपने विश्वासों को अपडेट कैसे करें, बेहतर फैसले लेने वाले ग्रुप्स कैसे बनाएं, और अपने अनुभवों से किस्मत और स्किल को अलग करके सही सबक कैसे सीखें।
बढ़िया। चलिए अब कुछ अध्यायों की मुख्य बातों पर थोड़ा और गौर करते हैं। पहला अध्याय है, जीवन पोकर है, शतरंज नहीं। यहां से किताब की नींव रखी जाती है ना?
हाँ बिल्कुल, ये किताब का क्या कहते हैं, मूल मंत्र है, फाउंडेशनल मेटाफर है।
शतरंज में आपको सारी जानकारी होती है, मोहरे कहाँ हैं, कैसे चलते हैं, सब कुछ साफ साफ दिखता है। जीत ज्यादातर आपकी चालों की गुणवत्ता पर, आपकी स्किल पर निर्भर करती है।
सही।
लेकिन पोकर में आपके पास अपने पत्ते तो हैं, पर दूसरों के पत्ते छुपे हुए हैं। आपको अंदाजा लगाना पड़ता है, संभावनाओं पर खेलना पड़ता है, और हाँ, किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है।
और ड्यूक कहती हैं कि जिंदगी के ज्यादातर जरूरी फैसले इसी तरह के होते हैं। हाँ, जैसे करियर चुनना, शादी करना, कोई बड़ा निवेश करना, ये सब पोकर जैसे ज्यादा हैं, शतरंज जैसे कम। इनमें अधूरी जानकारी और लक दोनों शामिल हैं।
और इसी अध्याय में रिजल्टिंग का वो उदाहरण भी था जिसका जिक्र हमने पहले किया, वो सुपर बाउल वाला।
हाँ, सुपर बाउल XLIX का, जहां सिएटल सीहॉक्स के कोच पीट कैरोल ने आखिरी पलों में गोल लाइन से पास करने का फैसला किया
और वो इंटरसेप्ट हो गया और वो हार गए।
हाँ, और उसके बाद सबने कहा कि ये इतिहास का सबसे खराब फैसला था। लेकिन ड्यूक पूछती हैं, क्या वो फैसला उस वक्त उपलब्ध जानकारी और संभावनाओं के हिसाब से तर्कसंगत था? क्या पास करने की सफलता की संभावना रन करने से ज्यादा थी? सिर्फ नतीजा बुरा होने से फैसला बुरा नहीं हो जाता।
तो असली सवाल प्रक्रिया का है।
बिल्कुल, ड्यूक हमें वो फॉर्मूला याद दिलाती हैं, जीवन का परिणाम बराबर निर्णय की गुणवत्ता प्लस भाग्य। हमारे नियंत्रण किस पर है?
निर्णय की गुणवत्ता पर।
एग्जैक्टली, भाग्य पर तो नहीं। इसलिए हमारा रोल, हमारा फोकस प्रक्रिया को सुधारने पर होना चाहिए।
बात अब और भी दिलचस्प होती जा रही है। दूसरा अध्याय है, शर्त लगाना चाहेंगे, वन अ बेट। इसका क्या मतलब है? क्या नाम में हर बात पे शर्त लगानी चाहिए?
नहीं नहीं, इसका मतलब पैसों की शर्त लगाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने विश्वासों को, अपनी मान्यताओं को संभावनाओं के चश्मे से देखना।
कैसे?
जैसे ये कहने के बजाय कि मुझे पक्का यकीन है कि ये प्रोजेक्ट सफल होगा, ये कहना कि मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट के सफल होने की संभावना लगभग 70% है, या मैं 80% श्योर हूँ।
अच्छा, तो इससे क्या फायदा होता है?
इससे हम अपने आत्मविश्वास के स्तर को लेकर ज्यादा ईमानदार, ज्यादा सटीक हो पाते हैं। ड्यूक कहती हैं कि हमारे सभी विश्वास असल में सच्चाई पर लगाई गई शर्तें हैं।
सच्चाई पर लगाई गई शर्तें?
हाँ, हम अपना समय, पैसा, ऊर्जा, अपनी साख, सब कुछ इस बात पर दांव पर लगाते हैं कि जो हम मानते हैं वो सच है। जब हम इस तरह सोचते हैं तो हमारा जो अति आत्मविश्वास होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस,
हाँ वो तो बहुत होता है,
वो कम होता है। हम ये मानने लगते हैं कि अरे हम गलत भी तो हो सकते हैं, और फिर हम दूसरे नजरियों को सुनने के लिए, उन पर विचार करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। तो ये सवाल क्या शर्त लगाना चाहेंगे, ये असल में खुद से और दूसरों से एक तरह की बौद्धिक ईमानदारी की मांग करना है। आप अपने विश्वास पर कितना दांव लगाने को तैयार हैं, उसकी क्या संभावना मानते हैं?
ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। अगला अध्याय है सीखने के लिए शर्त लगाएं, बेट टू लर्न। ये कैसे काम करता है? शर्त लगाकर कोई कैसे सीख सकता है?
हाँ, ये बताता है कि ये जो शर्तों वाली सोच है, ये बेटिंग माइंडसेट, ये हमें अपने अनुभवों से बेहतर सीखने में कैसे मदद करता है।
कैसे?
सबसे जरूरी चीज, ये हमें कौशल को किस्मत से अलग करने में मदद करती है, जो कि बहुत मुश्किल काम है।
हाँ ये तो है।
मान लीजिए आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया और आपको फायदा हुआ।
हाँ।
अब सवाल यह है, क्या ये आपके शानदार विश्लेषण का नतीजा था, यानी स्किल,
या सिर्फ बाजार ही ऊपर चला गया,
यानी किस्मत,
या दोनों का थोड़ा थोड़ा?
हाँ, या दोनों का मिक्स। और अगर नुकसान हुआ तो क्या आपकी रणनीति गलत थी, या सिर्फ टाइमिंग खराब थी, या मार्केट में कुछ अप्रत्याशित हो गया?
हाँ ये फर्क करना तो वाकई मुश्किल होता है। हम अक्सर नतीजों के आधार पर गलत धारणाएं बना लेते हैं, अंधविश्वासी हो जाते हैं कभी कभी।
बिल्कुल, ड्यूक कहती हैं कि हमें निरपेक्ष, मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं सोचना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, बल्कि हमें संभाव्य रूप से, प्रोबेबिलिस्टिकली सोचना चाहिए। अपेक्षित मूल्य, एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है।
अपेक्षित मूल्य वो क्या होता है?
मोटे तौर पर किसी फैसले के सभी संभावित नतीजों, पॉजिटिव और नेगेटिव, को उनकी होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी से गुणा करके जोड़ना। इससे पता चलता है कि औसतन लंबे समय में उस फैसले से क्या उम्मीद की जा सकती है।
ओके।
तो सीखने के लिए ये जरूरी है कि हम गलत होने को तैयार रहें, और नई जानकारी, नए सबूतों के आधार पर अपने विश्वासों को बदलें, उन्हें अपडेट करें। अगर हम हर बुरे नतीजे को अपनी गलती मानेंगे और हर अच्छे नतीजे को अपना कमाल, तो हम कभी सही सबक नहीं सीख पाएंगे। हम सीखेंगे ही नहीं कि हमारी प्रक्रिया में कहां सुधार की जरूरत है।
ठीक है। अध्याय 4 है बड़ी सिस्टम, द बड़ी सिस्टम। ये शायद दूसरों से मदद लेने के बारे में है, निर्णय लेने में।
हाँ, लेकिन ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। दूसरों से निष्पक्ष और उपयोगी प्रतिक्रिया लेना, फीडबैक लेना, एक बड़ी चुनौती है।
चुनौती क्यों?
क्योंकि हम सब प्रेरित तर्क, यानी मोटिवेटेड रीजनिंग के शिकार होते हैं।
मोटिवेटेड रीजनिंग?
हाँ, इसका मतलब है कि हम जाने अनजाने ऐसी जानकारी ढूंढते हैं या उस पर ज्यादा ध्यान लेते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय, हमारे विश्वासों का समर्थन कर दिया।
ओहो हाँ, कन्फर्मेशन बायस जैसा।
बिल्कुल, हम सच से ज्यादा सही होना चाहते हैं। हमें वो सुनना अच्छा लगता है जो हम पहले से मानते हैं, और जो हमारी राय से अलग हो उसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या उसमें कमियां ढूंढते हैं।
तो फिर हम प्रभावी निर्णय लेने वाले समूह कैसे बना सकते हैं? ऐसे दोस्त या सहकर्मी कैसे चुने जो हमारी सोच को बेहतर करें, न कि सिर्फ हमारी हाँ में हाँ मिलाएं?
ड्यूक कहती हैं कि हमें ऐसे समूह बनाने चाहिए जहां असहमति को न सिर्फ बर्दाश्त किया जाए बल्कि उसे प्रोत्साहित किया जाए, एक्टिवली उसे मांगा जाए।
असहमति को प्रोत्साहित? ये तो उल्टा लगता है।
लगता है, पर जरूरी है। समूह में अलग अलग नजरिए वाले, अलग अलग अनुभव वाले लोगों को शामिल करना चाहिए, और सबसे जरूरी, एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां लोग बिना किसी डर के, बिना ये सोचे कि कोई क्या कहेगा, अपनी बात रख सकें। इसे मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं।
अच्छा।
ड्यूक यहाँ CODOS नाम के एक ढांचे का जिक्र करती है जो रॉबर्ट मर्टन ने वैज्ञानिक समुदायों के लिए दिया था। CUDOS।
CODOS, ये क्या है?
सी यानी कम्युनलिज्म, ज्ञान साझा हो, छुपाया ना जाए। यू यानी यूनिवर्सलिज्म, विचार का महत्व हो, ये नहीं कि विचार किसने दिया। डी यानी डिसइंटरेस्टेडनेस, लक्ष्य सच खोजना हो, व्यक्तिगत लाभ या एजेंडा नहीं। और OS यानी ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म, हर दावे की संगठित रूप से, बिना व्यक्तिगत हुए आलोचनात्मक जाँच हो।
वाह, ये तो काफी गहरा है।
हाँ, इस तरह के माहौल में समूह हमारी व्यक्तिगत सोच की गलतियों को, हमारे बायस को पकड़ने में मदद कर सकते हैं।
और अध्याय 5, सहमति तक पहुंचने के लिए असहमति, डिसेंट टू रीच असेंट, ये शायद इसी बात को और आगे बढ़ाता है।
बिल्कुल, ये अच्छी प्रोडक्टिव असहमति के फायदे बताता है। कई बार सबसे अच्छे विचार, सबसे मजबूत फैसले तभी निकलते हैं जब कोई हमारी सोच को चुनौती देता है, हमें अलग तरह से सोचने पर मजबूर करता है।
लेकिन असहमति तो अक्सर झगड़े में बदल जाती है।
हाँ, बदल सकती है, इसीलिए ड्यूक कुछ तकनीकें बताती हैं जिनसे असहमति को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके। जैसे एक है रेड टीमिंग।
रेड टीमिंग?
हाँ, जैसे इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं, एक टीम बनाई जाती है जिसका काम ही होता है प्लान या आइडिया के खिलाफ तर्क देना, उसकी कमजोरियां ढूंढना, जानबूझकर डेविल्स एडवोकेट बनना।
अच्छा।
और दूसरा है स्टील मैनिंग।
स्टील मैनिंग, ये स्ट्रोमैनिंग का उल्टा है क्या?
एग्जैक्टली, स्ट्रोमैनिंग में हम किसी के तर्क का मजाक उड़ाते हैं या उसके सबसे कमजोर रूप को पकड़कर हमला करते हैं, लेकिन स्टील मैनिंग में हम सामने वाले के तर्क के सबसे मजबूत, सबसे अच्छे रूप को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं।
ये तो मुश्किल होगा।
मुश्किल है, पर इससे बहस ज्यादा सार्थक होती है। लक्ष्य ये है कि हम असहमत होना सीखें, बिना व्यक्तिगत हुए, बिना आक्रामक हुए, और ऐसा माहौल बनाएं जहां दूसरों को भी अपनी असहमति जताने में झिझक ना हो।
ये सीखना जरूरी है। अब आते हैं आखिरी अध्याय पर, जिसका हम विस्तार से जिक्र करेंगे। अध्याय 6, मानसिक समय यात्रा में रोमांच, एडवेंचर्स इन मेंटल टाइम ट्रैवल। ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है।
हाँ, और ये बहुत काम का भी है। ये इस बारे में है कि हम भविष्य के बारे में बेहतर सोचकर और अतीत के अनुभवों से सही ढंग से सीखकर अपने आज के फैसले कैसे सुधार सकते हैं।
भविष्य के बारे में सोचना और अतीत से सीखना, ये तो हम करते ही हैं। इसमें नया क्या है?
नया है वो तरीका जिससे हम ये करते हैं। हम अक्सर एक बायस का शिकार होते हैं जिसे कहते हैं टेम्पोरल डिस्काउंटिंग।
टेम्पोरल डिस्काउंटिंग?
हाँ, इसका मतलब है कि हम अभी मिलने वाले छोटे फायदे या मजे को भविष्य में मिलने वाले बड़े फायदे या नतीजे से ज्यादा महत्व देते हैं।
ओह, जैसे आज चॉकलेट केक खाने का मजा कल जिम जाने के फायदे से ज्यादा जरूरी लगता है।
बिल्कुल, या आज पैसे खर्च करने का मजा भविष्य के लिए बचाने से ज्यादा आकर्षक लगता है। हम तात्कालिक संतुष्टि चाहते हैं।
हाँ, ये तो बहुत होता है। तो इससे बचने के लिए क्या तरीके हैं इस मानसिक समय यात्रा में?
ड्यूक कई प्रैक्टिकल तकनीकें सुझाती हैं। एक बहुत मशहूर है प्रीमॉर्टम।
प्रीमॉर्टम? पोस्टमार्टम सुना है, ये प्रीमॉर्टम क्या है?
पोस्टमार्टम तो तब होता है जब कुछ गलत हो चुका हो, प्रीमॉर्टम फैसला लेने से पहले होता है। आप कल्पना करते हैं, मान लीजिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया या ये फैसला लिया और एक साल बाद ये बुरी तरह फेल हो गया।
ओ, नेगेटिव सोचना है।
हाँ, पर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से। अब सोचिए, ये फेल क्यों हुआ होगा, क्या क्या चीजें गलत हुई होंगी, क्या कारण रहे होंगे। ये तकनीक हमें संभावित समस्याओं, जोखिमों को पहले ही भांपने में मदद करती है ताकि हम तैयारी कर सकें।
ये तो बढ़िया है। और क्या है?
एक है 10-10-10 विश्लेषण।
10-10-10?
हाँ, कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से पूछिए, इस फैसले का 10 मिनट में क्या नतीजा होगा, 10 महीने में क्या नतीजा होगा और 10 साल में क्या नतीजा होगा।
अच्छा, तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सोचने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल, ये हमें तात्कालिक भावनाओं या दबावों से ऊपर उठकर दूरगामी परिणामों के बारे में सोचने में मदद करता है।
और एक और था शायद, यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट्स।
हाँ, यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये नाम ग्रीक माइथोलॉजी से आया है। इसका मतलब है भविष्य में किसी लालच या कमजोरी से बचने के लिए खुद को पहले से ही किसी नियम या वादे में बांध लेना।
जैसे?
जैसे अगर आपको पता है कि आप शाम को स्नैक्स खाने से खुद को रोक नहीं पाते तो घर में स्नैक्स लाना ही बंद कर देना, ये एक यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट है। या दोस्त से शर्त लगा लेना कि अगर कल सुबह जिम नहीं गया तो उसे पैसे दूंगा, ये खुद के भविष्य के कमजोर स्व को कंट्रोल करने का तरीका है।
ये सारी तकनीकें तो काफी प्रैक्टिकल लगती हैं। तो अगर हम इस पूरी किताब के जो मुख्य विषय हैं, जो मेन संदेश है, उनको समेटें तो वो क्या होंगे? मुझे लगता पहला और सबसे जरूरी तो यही है जो बार बार आया, कि नतीजा और निर्णय की गुणवत्ता एक ही चीज नहीं है।
हाँ बिल्कुल, रिजल्टिंग की जो भ्रांति है उससे बचना, फोकस प्रक्रिया पर, अपने रोल पर करना है।
दूसरा मुझे लगता है संभाव्य सोच, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग को अपनाना। दुनिया को काले और सफेद में, हाँ या ना में देखने के बजाय संभावनाओं के रंगों में देखना, 50%, 70%, 90%, इस तरह से।
सही, जैसे मौसम विभाग बताता है ना कि बारिश की 40% संभावना है, वो ये नहीं कहता कि बारिश होगी या नहीं होगी। हमें भी अपने फैसलों और विश्वासों को इसी नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी शतरंज नहीं, पोकर है, अनिश्चितता है।
तीसरा शायद बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, और विश्वासों को लगातार अपडेट करने की जरूरत। ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते, हम गलत हो सकते हैं।
हाँ, और नए सबूतों, नई जानकारी के आधार पर अपनी राय बदलने को तैयार रहना। वो ड्यूक का कोट याद है ना, हमारे विश्वास सच्चाई पर लगी शर्तें हैं और शर्तें बदल सकती हैं, उन्हें अपडेट करना जरूरी है।
बिल्कुल। और चौथा मेरे ख्याल से समूहों और असहमति का सही इस्तेमाल करना। अकेले हम अक्सर अपनी सोच की गलतियों, अपने बायसेस में फंस जाते हैं।
हाँ, सही ढंग से बनाए गए समूह और रचनात्मक असहमति हमें बेहतर सोचने में मदद कर सकते हैं। वो सवाल याद है, क्या शर्त लगाना चाहेंगे? ये हमें अपने और दूसरों के विश्वासों की मजबूती और उसके पीछे के तर्क को जांचने में मदद करता है। यह हमें ज्यादा ईमानदार बनाता है।
तो इन सारे विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल हो सकता है? कुछ उदाहरण?
बहुत तरीकों से। व्यक्तिगत फैसलों में देखिए, मान लीजिए आप करियर बदलने का सोच रहे हैं, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि नई नौकरी अच्छी होगी या बुरी, सोचिए संभावनाओं के टर्म्स में। यहाँ ज्यादा खुश रहने की कितनी संभावना है, सीखने की कितनी संभावना है, सैलरी बढ़ने की कितनी संभावना है।
अच्छा, मतलब निश्चित जवाब ढूंढने के बजाय संभावनाओं का आकलन करें।
हाँ, या मान लीजिए कोई हेल्थ रिलेटेड फैसला लेना है, किसी ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके सफल होने की संभावना कितनी है, साइड इफेक्ट्स की संभावना कितनी है। सिर्फ डॉक्टर पर या सुनी सुनाई बातों पर निर्भर रहने के बजाय प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचें।
और काम की जगह पर, दफ्तर में?
वहां भी बहुत काम आ सकता है। अगर आप लीडर हैं तो अपनी टीम के साथ कोई नई रणनीति बनाते समय प्री मॉर्टम विश्लेषण करें। टीम से पूछें कि ये प्लान क्यों फेल हो सकता है,
ताकि वो खुलकर अपनी चिंताएं बता सके।
बिल्कुल। या अगर आप निवेश के फैसले लेते हैं तो एक डिसीजन जर्नल बनाएं, लिखें कि आपने फैसला क्यों लिया, उस वक्त क्या जानकारी थी, आपने क्या संभावनाएं सोची थीं, ताकि बाद में जब नतीजा आए तो आप अपनी प्रक्रिया का सही मूल्यांकन कर सकें, न कि सिर्फ रिजल्टिंग करें यानी अच्छे नतीजे पर खुश हो जाएं और बुरे पर दुखी।
ये जर्नल वाला आइडिया अच्छा है, भर्ती करते समय भी ये काम आ सकता है।
हाँ, किसी उम्मीदवार को चुनते वक्त ये सोचने के बजाय कि ये परफेक्ट है या ये नहीं चलेगा, ये सोचें कि इस उम्मीदवार के इस रोल में सफल होने की कितनी संभावना है, हमारी टीम के साथ फिट होने की कितनी संभावना है।
और टीमों या परिवारों में भी ये माहौल बनाने वाली बात कि असहमति ठीक है।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसा माहौल बनाना जहाँ लोग बिना डरे अपनी अलग राय रख सकें, जहाँ असहमति को समस्या नहीं बल्कि बेहतर फैसले तक पहुँचने का एक जरूरी हिस्सा माना जाए। शायद परिवार में कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे घर बदलना है या बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, तो हर सदस्य को अपनी चिंताएं और अलग नजरिए खुलकर बताने के लिए प्रोत्साहित करना, 10-10-10 एनालिसिस साथ में करना।
और बातचीत में भी शायद हम अपनी भाषा बदल सकते हैं, जैसा आपने पहले कहा था।
हाँ, ये बहुत पावरफुल हो सकता है। पूरी निश्चितता से दावा करने के बजाय हम कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी 80% संभावना है, या मेरा अभी का विचार ये है, हालांकि मैं और जानकारी मिलने पर इसे बदल सकता हूँ।
या ये पूछना कि आपको क्या लगता है, मुझे अपनी राय बदलने के लिए क्या सच साबित होना जरूरी होगा।
बिल्कुल, इससे बातचीत ज्यादा खुली, ज्यादा सीखने वाली और कम टकराव वाली बन जाती है। हम सही होने की लड़ाई से हटकर सच के ज्यादा करीब पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं।
इस पूरी चर्चा से अगर मुझे एक मुख्य सीख, एक टेक अवे लेना हो, तो वो है नतीजों के बोझ से थोड़ी मुक्ति मिलना। ये समझना कि एक अच्छा सोचा समझा फैसला भी बुरे नतीजे दे सकता है, और एक बुरा बिना सोचा समझा फैसला भी अच्छे नतीजे दे सकता है, सिर्फ किस्मत से। हमारा रोल अच्छे फैसले लेने की कोशिश करना है, अच्छे नतीजों की गारंटी देना नहीं। ये सोच, ये काफी राहत देती है ना?
हाँ बिल्कुल, ये बहुत लिबरेटिंग है। मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख है अनिश्चितता को गले लगाना। हम हमेशा पूरी जानकारी, पक्के जवाबों, गारंटी की तलाश में रहते हैं, लेकिन ये किताब सिखाती है कि अनिश्चितता जिंदगी का हिस्सा है, और उसमें बेहतर तरीके से सोचना, संभावनाओं के साथ जीना, यही असली कला है। सही होने की जिद छोड़कर सच के ज्यादा करीब पहुंचने की कोशिश करना, ये ज्यादा जरूरी लगता है मुझे। और हाँ, ये भी कि बेहतर फैसले अक्सर अकेले में नहीं लिए जाते, हमें दूसरों के नजरियों की, उनकी चुनौतियों की जरूरत होती है।
प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।